તારીખ 3/7/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 500 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 495
હિન્દી પ્રશ્ને 406 નંબર કા પેજ હિન્દી મેં 406 પેજ 406 પત્ર 500 399 પાનું ગુજરાતીમાં શ્રી સૂર્ય પુરુષથી શુભેચ્છા પ્રાપ્ત શ્રી લલ્લુજી સૂર્ય પુરુષ સુરત સુરત ને સૂર્ય પુરુષ ઉપાધિ રૂપ વ્યવહાર રહેતા હૈ પોતાની વાત કરે મુંબઈ થી પત્ર લખે છે યહાં ઉપાધિ રૂપ વ્યવહાર રહેતા હૈ પ્રાય આત્મસમાધિ કી સ્થિતિ રહેતી હૈ ઓર જે ઉપાધિ રૂપ વ્યવહાર હૈ ઉસમે ભી આત્મસમાધિ કી સ્થિતિ રહેતી હૈ ભીતર મેં જો પરિણતિ ચલતી હૈ તે પરિણતિ આત્મસમાધિ રૂપ હૈ એને જ્ઞાની કો એક વક્ત દો પ્રકાર કે પરિણામ હોતે હૈ યાને એક પરિણામ મેં દો પ્રકાર કે ભાવ હોતે હૈ એક આત્મભાવ ભી હોતા હૈ ઓર એક ઉદય ભાવ ભી હોતા હૈ ઉદય ભાવ મેં તો વ્યવહાર ઓર વ્યવહાર કી ઉપાધિ હૈ ઓર ભીતર મેં આત્મસમાધિ આત્મા કી સ્થિતિ હૈ આત્મામય સ્થિતિ હૈ આત્મારૂપ સ્થિતિ હૈ તો ભી પુરુષ વ્યવહાર કે પ્રતિબંધ સે છૂટને કા વારંવાર સ્મૃતિ મેં આયા કરતા હૈ ઇસ વ્યવહાર કા બંધન ન રહે ઓર નિવૃત્તિ મેં રહે કરકે હમ આત્મકાર્ય કરે એસા સ્મરણ આયા કરતા હૈ મતલબ વો હૈ વ્યવહારિક ઉપાધિ પ્રિય નહીં હૈ તો પ્રિય ઇસકી રુચિ નહીં હૈ પ્રિય ભી નહીં હૈ મતલબ ઇસકી રુચિ ભી નહીં હૈ ઉસ પ્રારબ્ધ કી નિવૃત્તિ હોને તક તો વ્યવહાર કા પ્રતિબંધ રહેના યોગ્ય હૈ ઓર વો પ્રારબ્ધ પૂરા હો જાય નાશ હો જાય વહાં તક તો વ્યવહાર રહે વો ઠીક હૈ રહેગા યાને હમ સંભાવ સે ઉસકા વેદન કરેંગે સંભાવ સે વેદન કરના મેને ઉદય આયા તો એ ઉદય અચ્છા આયા એસા નહીં કરેંગે અનુકૂળતા આને સે પ્રતિકૂળતા હોને સે ઉદય બરાબર નહીં આયા એસા નહીં કરેંગે જો ભી આયા પ્રારબ્ધ કા ઇસકે સાથ સંબંધ હૈ મેરા ઇસકે સાથ કોઈ સંબંધ નહીં હૈ સંભાવ સે વેદના મેને કે અપને સ્વરૂપ મેં રહેકર વેદના ઓર ઉદય કા ભિન્નત્વ અનુભવ કરના તો મેરા ઇસસે કોઈ સંબંધ નહીં હૈ મુમુક્ષુ કી કોણ સી ભૂમિકા હૈ એ પહેલા રહેના પડેગા જો પ્રારંભ કી ભૂમિકા હો તો આત્મકલ્યાણ કી ભાવના તીવ્ર હોની જરૂરી હૈ વહી પ્રારંભ કી ભૂમિકા હૈ ઉત્કૃષ્ટ ભૂમિકા હૈ તો વો ભેદ જ્ઞાન કા પ્રયાસ કરેગા સબ મુમુક્ષુ ભેદ જ્ઞાન કા પ્રયાસ ભી નહીં કર સકતા ઇસલિયે મુમુક્ષુ કો ક્યા કરના એસા નહીં કૈસે મુમુક્ષુ કો ક્યા કરના ये बात सोचनी पड़ेगी क्यों कि उत्कृष्ट मुमुक्ष को जो बात लागू पड़ती है वो नीचे वाले को नहीं लागू पड़ती है इसलिए दोनों के प्रकार परिणाम उनके अलग अलग होते हैं ऐसे बात सामान्य मुमुक्षु को तो आत्मकल्याण की भावना तीव्र होनी चाहिए, पर वो भावना वसात उनके परिणाम ठीक चलेंगे, उसकी भूमिका के अनुकूल चलेंगे। और जो आगे बढ़े हैं वो तो ज्ञानी होने लायक होते हैं, वो सम्यक्त्व के समीप होते हैं, मोक्ष मार्ग के समीप होते हैं। तो ज्ञानी का पुरुषार्थ जैसा होता है उस प्रकार का वो अनुसरण करने लग जाता है। इसलिए समुचित पूर्वक स्थिति रहती है। क्या है, उदय में भी हमारी स्थिति समुचित पूर्वक को हो या सम्यक प्रकार को हो या संभाव को हो, हमारी स्थिति तो ऐसी रहती है। उदय से हमें अपना पर होता नहीं है, उदय उदय में है, मेरा अस्तित्व मेरे में प्रत्यक्ष अनुभव गोचर हो ही रहा है, तो फिर मुझे क्या लेना देना है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपका लिखा एक पत्र प्राप्त हुआ है, योग वाशिष्ठादि ग्रंथ का अध्ययन होता हो तो वो हितकारी है। योग वाशिष्ठ रामायण करके एक ग्रंथ है, उसमें दो प्रकरण बहुत बढ़िया है, एक रामचंद्र जी का वैराग्य प्रकरण है और एक सत्संग प्रकरण है, दोनों प्रकरण बहुत बढ़िया है। मूल ग्रंथ संस्कृत में है और इसका गुजराती हिंदी भाषांतर भी आजकल मिलता है। योग वाशिष्ठादि ग्रंथ अध्ययन हो तो वह हितकारी है। जिनागम में भिन्न भिन्न आत्मा मानकर परिणाम में परिमाण में अनंत आत्मा कहे हैं, और वेदांत में उसे भिन्न भिन्न कहकर सर्वत्र जो चेतन सत्ता दिखाई देती है वो एक ही आत्मा की है और आत्मा एक ही है, ऐसा प्रतिपादन किया है। आत्मा एक है या अनेक है, वह जैन दर्शन है, जैन शास्त्रों में अनंत आत्माओं का माप है, परिमाण मैंने माप, मान मैंने माप, परिमाण मैंने पूरा माप। तो प्रत्येक आत्मा गिनती से संख्या करो तो अनंत आत्माएं हैं, और प्रत्येक का अस्तित्व एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग अलग है, जबकि वेदांत में ऐसी मान्यता नहीं है। वेदांत में ऐसा कहेंगे कि जीवन एक है फिर भी एक आत्मा के सत्ता का ये अंश है, एक ही आत्मा मानते हैं, सारे विश्व में दो आत्मा नहीं है, आत्मा एक ही मानते हैं। हाँ, भगवान का अंश को आत्मा का अंश कहो, पर ब्रह्म का अंश कहते हैं, वो क्या कहते हैं, परम ब्रह्म है, एक सत्ता परम ब्रह्म के है सारे विश्व में है, तो जड़ की सत्ता को भी भिन्न नहीं मानते, जड़ की सत्ता को भी भिन्न नहीं मानते, एक ही पदार्थ है विश्व में परम ब्रह्म, बाकी सब उसका अलग अलग रूप है, जूझे रूप है अनंत भाष है, नाम रूप जूझवा जुजवा थे अलग अलग। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि जूझवे रूपे अनंत भाषे, नपत है लोग भक्त नपत है, हे भगवान तू तो आखा ब्रह्मांड में एक छो, आ जुदा जुदा रूपे अनंत प्रकारे भाषे छो। एम वेदांत ने अंदर परम ब्रह्म एक ही आत्मा ईश्वर एक ही है, इसका ही सब अंश है ऐसा मानते हैं। जैन दर्शन में प्रत्येक आत्मा भिन्न भिन्न है, किसी से किसका भी लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। एक वेदांत से चर्चा हुई थी कि हम तो ऐसा मानते हैं, और ऐसा मानने से ये मेरा और ये तेरा ऐसा राग द्वेष नहीं होता है, तो ऐसा मानना ही चाहिए, मेरा तेरा का राग द्वेष नहीं होगा। कहते युक्ति तो ठीक बनाई है, युक्ति तो ठीक बनाई है कि मेरा तेरा नहीं हो गए, लेकिन वास्तव में एक आत्मा नरक में है, एक आत्मा स्वर्ग में है, एक बहुत दुख भोगता है, एक बहुत अपने को सुखी मान करके सुख भोगता है। ऐसा एक सत्ता होने से ऐसा कैसे बन सकता है? वहां तो आप कहेंगे कि कर्मानुसार है, तो भिन्न भिन्न आत्मा को भिन्न भिन्न कर्मानुसार गति स्थिति होती है, क्या बात है? तो व्यवस्थित विचारधारा नहीं है, इसका कोई उत्तर समाधान नहीं मिल सकेगा। युक्ति लगाएंगे तो एक जगह तो युक्ति लागू पड़ेगी, दूसरी जगह वो इसका कोई समाधान नहीं मिलेगा। वेदांत में उसे भिन्न भिन्न कह करके भी सर्वत्र जो चेतन सत्ता दिखाई देती है वह एक ही आत्मा की है और आत्मा एक ही है, ऐसा प्रतिपादन किया है। ये दोनों ही बातें मुमुक्षु पुरुष के लिए अवश्य विचारणीय है, मुमुक्षु जीव को ये दोनों बात अवश्य विचार करने चाहिए, विचार करने योग्य है। ऐसा नहीं है कि हमको मत के मंडन खंडन में नहीं पड़ना है, वहां ऐसा नहीं देना है। सत्य क्या है वो तो अपने आत्महिता हित के लिए जानना जरूरी है। और यथा प्रयत्न इन्हें विचार कर निर्धार करना योग्य है, यह बात निसंदेह है। विचार करना, विचार करके उसका निश्चय निर्धार करना, मैंने निश्चय करना और निसंदेह रूप से इतना तो होना ही चाहिए। तथापि जब तक प्रथम वैराग्य और उपशम का बल दृढ़ता से जीव में न आया हो तब तक उस विचार से चित्त का समाधान होने के बदले चंचलता होती है, पर उस विचार का निर्धार प्राप्त नहीं होता तथा चित्त विक्षेप पाकर फिर वैराग्य उपशम को यथा रूप से धारण नहीं कर सकता। देखो पहले क्या करना, वो क्रम की बात आई। क्यों कि आत्मा एक है या आत्मा अनेक है, ये सिद्धांत ज्ञान का विषय है। किस प्रकरण में जाता है? ये सिद्धांत के प्रकरण में जाता है। सिद्धांत का अभ्यास कब करना? वैराग्य उपशम प्राप्त हुए तब करना। बिना वैराग्य उपशम सिद्धांत का अभ्यास करेंगे तो उसको चंचलता प्राप्त हो जाएगी। क्या बोले? चंचलता प्राप्त हो जाएगी, यानी वो अभ्यास करने के लिए योग्य है ही नहीं, उसको नुकसान होगा, ऐसा कहते हैं। चंचलता मैंने समाधान नहीं होकर के असमाधान होगा, असमाधान होगा तो और विचार में चक्रावा चढ़ेगा, उसको कहते हैं चंचलता। समाधान नहीं हो पाएगा, जब समाधान नहीं होगा तो असमाधान में चित्त विवल हो जाएगा। ऐसा होगा या कैसा होगा अपने को क्या मालूम? वेदांत वाले सही कहते हैं या जैन वाले सही कहते हैं? फिर क्या होगा कि वेदांत वालों की संख्या बड़ी है और हमारी संख्या जैनियों की कम है, तो इतने लोग भूल थोड़ी ना करते हैं। इतनी बड़ी संख्या वाले हजारों लोगों की भूल थोड़ी होती है, इसलिए इसमें भी कुछ दम होगा। ये सब प्रकार के असमाधान और चंचलता की बात हो जाएगी, ऐसा होता है। ये आता है ना आजकल, तो उसके पिक्चर भी बनते हैं चमत्कार, अनेक प्रकार के धार्मिक जो चलचित्र बनते हैं सिनेमा, उसमें क्या आता है? भगवान का चमत्कार आता है या कोई संत का चमत्कार आता है? और चमत्कार के पीछे वो शिरडी का साईं बाबा से लेकर के ये संतोषी माता विनाश, कहीं कहीं अभी तो कर बहुत बन गया है। भगवान का चमत्कार आएगा और इसके मानने वाले कितने? बहुत बड़े लोग, इतनी संख्या है। सत्य के मानने वाले की इतनी संख्या नहीं है जितनी संख्या आजकल असत्य को मानने वाले की है, और सामान्य बुद्धि से वो बात आएगी कि इतना ज्यादा लोग मानते हैं तो सब मूर्ख थोड़ी होते हैं। सब मूर्ख होते हैं क्या? ऐसा नहीं, ऐसा मान ही नहीं सकते कि इतने सब मूर्ख होते हैं। बात में तो सुदम होगा, अवश्य ऐसा कुछ होगा। मीरा ने जहर का प्याला पी लिया तो भी मरी नहीं, अमृत हो गया। तो चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? अमृत तो नहीं हुआ था, अमर होती तो मरती नहीं। अमृत अगर अमृत हो गया और अमृत पी लिया होता तो मरती नहीं, लेकिन उसका भी नाश हो गया। तीर्थंकर हो तो भी देह का तो नाश होता ही है, आयुष पूरा होता ही है उनका भी। तो जिसने जन्म धारण किया, देह का संयोग हुआ, उसका देह का वियोग अवश्यम भावी है ही। इसका देह का वियोग नहीं हो ऐसा बन सकता नहीं है, क्योंकि ये संयोगी पदार्थ है, वियोग के साथ ही वो रहता है। अंत को हेम नु हेम हो, हेम मतलब सोनो, सोने का अनेक घाट बनाए, फिर उसको गाले तो क्या हो जाए? सोना का सोना रह जाएगा। ऐसे एक मनुष्य बना, एक पशु पक्षी बना, सब एक ही आत्मा है, फिर एक ही हो जाएगा। वो लोग क्या मानते हैं? एक दिन ऐसा आएगा जिसमें संसार में विश्व में प्रलय हो जाएगा, और ये अनेक जीव है वो अनेक नहीं रहेंगे, एक पर ब्रह्म में सब विलीन हो जाएंगे, ज्योतमा ज्योत मिल जाएगी, ऐसा करके लेते हैं। ये सब कल्पना है, वास्तव में ऐसा होने वाला भी नहीं है, और ऐसा कभी होता भी नहीं है, हुआ भी नहीं है। फिर से तथापि जब तक प्रथम वैराग्य और उपशम का बल दृढ़ता से जीव में न आया हो, क्या कहते हैं? सिद्धांत ज्ञान का अभ्यास करने के पहले ये जरूरी है कि वैराग्य और उपशम दृढ़ता से मुमुक्ष में आना चाहिए, ये खास बात है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नुकसान होगा होगा और होगा, और ये प्रत्यक्ष दिखने में आता है। ये बात आजकल साबित करने की जरूरत नहीं रही है। परिणाम तो अलग अलग है, लेकिन होता है साथ में, अविनाभावी है। वैराग्य और उपशम का अर्थ किया है? अच्छा, एक साल लगता है, लेकिन अलग अलग पर्याय है। 506 नंबर का पत्र है ना, गुजराती में पानो क्यों से गुजरा?
800
ग्रह कुटुंब परिग्रह आदि भाव में जो अहमता ममता है, मैंने अपनापन है, और अपनापन के अभिप्राय पूर्वक, अपनापन की मान्यता पूर्वक, उसकी प्राप्ति और प्राप्ति के प्रसंग में, या संयोग और वियोग के प्रसंग में जो राग द्वेष कषाय है, वही विपर्यस बुद्धि होती है। और जहां वैराग उपशम उद्भव होता है, वहां अहमता ममता कषाय मंद पड़ जाते हैं, रस मंद होता है, अनुक्रम से नष्ट होने के योग्य होता है। ग्रह कुटुंब आदि भाव में अनासक्त बुद्धि होना यह वैराग्य है। क्या परिभाषा? क्या ग्रह कुटुंब आदि भाव में अनासक्त बुद्धि होना, आसक्ति नहीं होना, यह वैराग्य है। और उसकी प्राप्ति अप्राप्ति के निमित्त से उत्पन्न होने वाले कषाय क्लेश का मंद होना वो उपशम है। मतलब एक ही प्रसंग में दोनों साथ में रहते हैं, एक साथ लगता है लेकिन दोनों अलग अलग है। अनासक्त बुद्धि को वैराग्य कहा और कषाय क्लेश का मंद होने को उपशम का, रस मंद होता है उसको उपशम कहते हैं। तो पहले ऐसा होना जरूरी है, फिर सिद्धांत बोध का अभ्यास करना, इसके पहले करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तथापि जब तक प्रथम वैराग्य और उपशम का बल दृढ़ता से जीव में न आया हो, तब तक उस विचार से चित्त का समाधान होने के बदले चंचलता होती है, यानी असमाधान को प्राप्त होता है, यथार्थ समाधान हो पाता नहीं है। और उस विचार का निर्धार भी प्राप्त नहीं होता, निर्णय पर नहीं आ सकता, यथार्थ निर्णय नहीं होगा। तथा चित्त को विक्षेप पाकर चित्त में क्या होगा, खलबली मचेगी। पहले जितनी नहीं थी इससे ज्यादा खलबली मचेगी, उसको विक्षेप कहते हैं। और चित्त विक्षेप पा करके फिर वैराग्य उपशम को यथार्थ रूप से धारण नहीं कर सकता, तो उसको वैराग्य उपशम आना मुश्किल हो जाता है। क्या कहें फिर से, अगर वैराग उपशम पूर्वक सिद्धांत बोध का अभ्यास नहीं किया, तो बिना वैराग उपशम से जो सिद्धांत बोध का अभ्यास किया फिर परिस्थिति ऐसी बनेगी तो उसको वैराग उपशम आएगा नहीं, आने का मुश्किल हो जाएगा। तो वैराग उपशम को धारण कर सकता नहीं है। वो तो पंकज भाई कहते थे, वो कहते थे कि जो रुखापन आ गया है सिद्धांत का अभ्यास करके करके मेरे, वो तो अपनी बात करते, मेरे में जो शुष्कता आ गई है अब ये शुष्कता मिटाने का तकलीफ होता है, फीलिंग स्टेट में नहीं आ सकते, बात समझते हैं फीलिंग स्टेज में आ सकते हैं नहीं है। गड़बड़ हो गई बात, पढ़ा तो शास्त्र पढ़ा है लेकिन स्थिति शुष्क ज्ञान की हो जाती है, तो फिर उनको जो असर होनी चाहिए वो असर होती नहीं है, शुष्क ज्ञानी को असर नहीं होती है। संगति ऐसी खुद करता है तो है, खुद नहीं करे तो क्या है, खुद नहीं करे तो कोई खींच के ले जाए तो भी नहीं जाएगा और न सामने से चला जाएगा, ये होता है, ये पूर्व प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बात है क्या नहीं है, पता नहीं लगेगा, वो तो है ही। वो तो बहुत जरूरी चीज इसलिए है कि कदम कदम पर भूलने की जगह है, करेंगे क्या, एक बात समझ में आई, अरे सत्पुरुष की विद्यमानता में समझ में आई, पर वो बात का वो प्रयोग करने जाए और उसमें कोई तकलीफ हो जाए क्या करें, प्रयोग करने में सफल नहीं हो या कोई बात समझे उसके असर नहीं हो, क्या करें, करें भी क्या, कि उनको प्रत्यक्ष की जरूरत पड़ेगी। फिर से तब तक उस विचार से, मैंने सिद्धांत के विचार से चित्त का समाधान होने के बदले चंचलता होती है और इस विचार का निर्धार प्राप्त नहीं होता, यानी यथार्थ निश्चय नहीं होता, तथा और क्या होता है, चित्त विक्षेप पा करके, इतना विक्षेप आ जाता है चित्त में कि फिर वैराग्य और उपशम को यथार्थ रूप से धारण नहीं कर सकता, यथार्थ वैराग्य उपशम उसको आने में तकलीफ हो जाएगी, एक नई विटमना खड़ी होगी, शास्त्र सिद्धांत पढ़ करके नई विटमना खड़ी हो गई, ऐसा बनता है। हाँ, दर्शन मोह बढ़ाया, कर्म विप्रयास करके दर्शन मोह इतना तीव्र किया कि अभी फीलिंग स्टेज में आ सकता नहीं है। खुद को ये प्रश्न होगा, बात तो ठीक है, अनंत जन्म मरण का कारण हमने मिटाया तो नहीं, फिर इस कारण की चिंता क्यों नहीं? हाँ, जब ये कारण मिटा नहीं है, ये मालूम पड़ता है, बुद्धि सम्मत होती है, फिर उसका चिंता, उसका दुख, उसकी वेदना क्यों नहीं होती है? कि उसको बात सही रूप से समझ में नहीं आई, वो बात है। समझने के लिए जीव में वैराग्य उपशम और सत्संग का बल, वैराग्य उपशम को यथार्थ रूप से धारण नहीं कर सकता, इसलिए उस प्रश्न का समाधान ज्ञानी पुरुषों ने किया है, ज्ञानी पुरुषों ने ऐसी बात में मार्गदर्शन दिया है। उसे समझने के लिए इस जीव में वैराग्य उपशम और सत्संग का बल अभी तो बढ़ाने योग्य है। देखो, तो ये लल्लू जी को लिखते हैं, किसको लिखते हैं? जैन है? साधु हो गए थे, दीक्षा ले लिया था, तो क्या वैराग्य नहीं होगा उसको? है, यथार्थ रूप से वैराग्य आना चाहिए। क्या यथार्थ रूप से वैराग्य आना चाहिए? वैराग्य तो अन्य मति को भी आता है, वैराग्य तो बोलते हैं सब, वहां भी संन्यास ले लेते हैं, कपड़ा बदल करके, वो भी समाज को कुटुंब को छोड़ करके चले जाते हैं, और जैन में भी दीक्षा लेते हैं, तो वैराग्य है क्या? नहीं है। वैराग्य होना एक बात है, और यथार्थ रूप से वैराग्य होना कोई दूसरी बात है, ये बात है। हाँ, यथार्थ रूप से वैराग्य तो बात आए कि परिभ्रमण की वेदना चालू होती है, तो हाँ, त्याग वैराग्य ने चित्तमा, चित्तमा इत अभिप्राय मा, जिसके अभिप्राय में भी ऐसा हो कि त्याग वैराग्य की कोई जरूरत नहीं है, आत्मा 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 करके आत्मा के बाद सीख लो, समझ लो और रटते रहो, आत्मा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। त्याग वैराग्य ने चित्तमा था, अभिप्राय में ऐसा होना जरूरी है कि मेरे परिणाम वैराग उपशम समेत होगा, तभी मुझे अनुभव होगा। दर्शन वो मंद हुए बिना दर्शन वो का अभाव कभी होता नहीं है, किसी को भी नहीं होता। फिर चाहे वो दर्शन वो मंद होने में किसी को काल थोड़ा लगे या किसी को ज्यादा लगे, वो अलग बात है, लेकिन पहले मंद होता है, बाद में ही अभाव होता है, ये नियम है। इसलिए उस प्रश्न का समाधान ज्ञानी पुरुषों ने किया है, किसी प्रश्न का कि पहले आत्मा एक है अनेक है, इसका क्या करें? सिद्धांत का प्रश्न हम लोगों को ज्यादा उठता है, अरे हमारे नजरिया ऐसे हो गए कि हर बात को हम सिद्धांत से ही मुलवते हैं, खताते हैं, लेकिन वैराग्य उपशम जीवन में दृढ़ता से आए बिना ये बात में जाना चाहिए नहीं। योग्य है, देखो क्या कहा कि ऐसा विचार करके, ये बढ़ाने योग्य है ऐसा विचार करके, वैराग्य का बल बढ़ने के साधनों का आराधन करना, यानी ऐसा जीवन में अपना जीवन का बाह्य जीवन का भी क्रम होना चाहिए कि जिसमें वैराग्य विशेष रहे। रंग राग के प्रसंग से दूर रहना जरूरी है, रंग राग के माहौल में भी मत जाना और ऐसे प्रसंग में भी। फिर भी उदय वसो प्रसंग आ पड़े तो सावधान रह करके अपने वैराग्य में रहना, उसमें मिल जाना नहीं, सबके साथ मिल जाना नहीं, अलग होना चाहिए। मुमुक्षु अलग पड़ जाता है, क्या होता है, मुमुक्षु है वो अलग पड़ जाता है, दूसरे को लगता है कि नहीं ये हमारे जैसा नहीं है, वो हमारे जैसा नहीं है, कोई फर्क है। ये कृपालु देव कहते थे कि आपको समाज वाले मिलते हैं और आप समाज से जुड़े हुए हैं, कोई सगे हैं, संबंधी है, कुछ न कुछ तो है ही, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग तो विरोध करते हैं इसका, फिर भी वो विरोध करते हैं, हमारा विरोध नहीं करते। कितना भी कोई अपना व्यक्तिगत विरोध कर रहे, इससे क्या हो गया, इसके प्रति हमारा आंख के कोने में भी द्वेष आना चाहिए नहीं। कभी इसको मालूम पड़ेगा, अरे कसाई करेंगे तो कसाई करेगा, विरोध करने वाले से विरोधी होएगा, ये नहीं होता है। नक्की कोई सत्पुरुष उसको मिला, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता, वरना तो भिड़ जाता, कसाई करने वाले विरोध करने वाले से आमने सामने आ जाता। लेकिन इसका व्यवहार बदल गया है तो लगता है कि कोई सत्पुरुष उसको मिल गया है, ऐसा अगले को लगना चाहिए, इंप्रेशन आना चाहिए कि अलग है, कोई हमारे जैसा नहीं है। એમ કરીને કસાય વિષય કસાયનું પોષણ કરવા છે ને, એમ કરીને શું કરવું છે, વિષય અમે વૈરાગી નથી, રાગને પકડી રાખવા છે, જકડી રાખવા છે, એ તો થયા જ એના દિનો, ऐसा विचार करके जीव में वैराग्यादि बल बढ़ाने के साधनों का आराधन करने के लिए नित्य प्रति विशेष पुरुषार्थ योग्य है। नित्य पुरुषार्थ करना ऐसा नहीं, पुरुषार्थ करना उतना नहीं लिखा, नित्य पुरुषार्थ करना उतना भी नहीं लिखा, नित्य प्रति विशेष पुरुषार्थ करना योग्य है। देखो आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ना चाहिए, नाकामा मत रहना, आगे बढ़ना तो बल बढ़ेगा, इसका मतलब ये हो गया। और विचार नहीं करना, साधन ऐसा विचार करके आराधन करना वो बात है, परिणमन करने की बात है। तो मुमुक्षु की भूमिका में परिणमन, कहा मुमुक्षु की भूमिका में भी परिणमन होना ही चाहिए। वास्तव में समझने में तो कोई देर नहीं लगती, नव तत्व धड़ चेतन और उसके गुणधर्म समझने में क्या देर लगती है, परिणमन का पुरुषार्थ होना जरूरी है। परिणमन तो उदय में जागृत होवे तो परिणमन आए, बिना रहे नहीं। हमारा उदय क्या है, खाना पीना गृहस्थी में जो भी हमारा उदय है, उसमें हम जागृति में नहीं आएंगे तो परिणमन क्या रहेगा। उदय में हम उदय के साथ तन्मय हो जाए तो दूसरे तो ऐसे होते हैं मुमुक्षु, और उसमें क्या फर्क हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ। वहां जागृति रह करके निरस परिणाम हुए उसको वैराग्य उपशम बोला जाता है, और उसके लिए जागृति का पुरुषार्थ होना जरूरी है, होना ही चाहिए। विचार की उत्पत्ति होने के बाद वर्धमान स्वामी जैसे महापुरुषों ने पुनः पुनः विचार किया कि इस जीव का अनादि काल से चारों गतियों में अनंत बार अनंतानंत बार जन्म मरण होकर भी होने पर भी वह अभी वह जन्म मरण आदि स्थिति क्षीण नहीं होती, उसे अब किस प्रकार से क्षीण करना। देखो ये प्रारंभ की बात आई कि नहीं आई,
गुजरात
है ललू जी स्टार्टिंग में है ना, इसलिए वो बात पर ले गए हैं, स्टार्टिंग के कारण से उस बात पर ले गए हैं। विचार के उत्पत्ति के होने के बाद इसका मतलब क्या है, विचार परिणाम करना है कि आत्मकल्याण का विचार जिसको हुआ है उसको विचार की उत्पत्ति कहते हैं। प्रारंभ में क्या होता है, आत्मकल्याण का विचार होता है, तो ऐसा विचार उत्पन्न होने के बाद, क्योंकि जिसको आत्मकल्याण का विचार नहीं होता है वो तो संसार की दौड़ में इतना दौड़ता है कि मुड़ करके पीछे देखता नहीं कि मैं कितना दौड़ा और कहाँ दौड़ा और कितना दौड़ने वाला हूँ, दौड़ता ही जाता है, तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिसको आत्मकल्याण का विचार हुआ कि कर लेना चाहिए, आत्मा का कल्याण करना चाहिए, उसको क्या करना कि वर्धमान स्वामी जैसे महापुरुषों ने ये विचार किया है, मैंने विचार किया है वो बात नहीं किया है, ये तो हमारे शासन नायक थे उसने भी ऐसा विचार किया था। ठीक, तीर्थंकर के नाम से लेते हैं बात को, पुनः पुनः विचार किया वर्धमान स्वामी जैसे महात्मा पुरुषों ने, उन्होंने बार बार विचार किया। क्या विचार किया कि इस जीव का अनादि काल से चारे गतियों में अनंत अनंत बार जन्म मरण हो चुका है, जीव का अनंत अनंत बार जन्म मरण हुआ है चारों गतियों में, फिर भी अभी वह जन्म मरण आदि की स्थिति क्षीण नहीं होती, अभी भी यह जन्म मरण रहने का कारण चालू है, तो उसका कार्य भी चालू रहने वाला है ही, उसे अब किस प्रकार से क्षीण करना, ये चिंता पहला होनी चाहिए कि कैसे मिटाऊं मैं ये जन्म मरण के कारण का नाश, में कैसे करूं, ये प्रश्न बराबर खड़ा होना चाहिए। जहां तक उस प्रश्न का समाधान का आराधन नहीं हो वहां तक ये प्रश्न खड़ा रहना चाहिए, आराधन होना चाहिए, इसका परिणाम आना चाहिए। ये प्रयोजन भूत है और दूसरी दूसरी बातें प्रयोजन भूत है, क्यों जाए इसमें, क्यों उलझे, फालतू की बातों में उलझने से फायदा भी क्या है, कोई फायदा नहीं है। जिसका अभी प्रयोजन नहीं है इस बात का क्या फायदा, बात तो शुक्र ध्यान की हो सकती है लेकिन क्या करना, इससे क्या फायदा, अभी भूख लगी है और भंडार भरे है कहीं और जगह, इसकी बात करते रहो तो भूख मिटने वाली नहीं है। अब उसे किस प्रकार से क्षीण करना, और देखो गहराई में जाते हैं, ऐसी कौन सी भूल इस जीव की रहती आई है, धर्म साधन तो बहुत किए, यम नियम संयम आप कियो पुनि त्याग विराग, उसमें भी त्याग विराग आया, उपशम नहीं लिया, देखो वहां उपशम नहीं आया है, उपशम पूर्वकता के त्याग वैराग्य नहीं आया है, वो बात नहीं लिया है, यम नियम संयम लिया, उपशम नहीं लिया है। तो कौन सी भूल रहती आई है, अनंत वार किया हुआ साधन वार अनंत, ऐसी कौन सी भूल रहती आई है, इसकी गहराई में जाने की बात है। और ऐसी कौन सी भूल इस जीव की रहती आई है कि जिस भूल का यहां तक परिणमन हुआ है, कि भूल का परिणमन में जन्म मरण चालू रहा है, इस प्रकार से पुनः पुनः, देखो ये पत्र भी गोब्रमण की वेदना का स्टेज का है, ये पत्र भी सबों को काम में आवे ऐसा है, भले ही लल्लू जी पे लिखा हो लेकिन सबको काम में आवे ऐसी बात है। इस प्रकार से पुनः पुनः अत्यंत एकाग्रता से, देखो कैसे करना नहीं आती है वेदना, कैसे करना क्या करना, इसी विषय को लेकर के पुनः पुनः बार बार इसी विषय को लेकर के अत्यंत एकाग्रता से सतबोध सद्बोध के वर्तमान परिणाम से विचार करते करते जो मूल जो भूल भगवान ने देखी है और जिनागम में जगह जगह कहाँ है, उसे जिनागम में जगह जगह कहाँ है कि जिस भूल के समझकर मोक्ष जी उससे रहित होता हो, भूल समझे तो भूल मिट जाए, और कोई दूसरी बात इसमें नहीं है। क्या कहा फिर से कि इस प्रकार से पुनः पुनः अत्यंत एकाग्रता से सद्बोध के वर्धमान परिणाम से विचार करते करते इतनी शर्त रखी है कि पुनः पुनः अत्यंत एकाग्रता से अपने परिणाम में वर्धमान परिणाम हुए, इस प्रकार से विचार करते करते जो भूल भगवान ने देखी है उसे जिनागम में जगह जगह कहा भी है कि जिस भूल की समझकर मुमुक्षु जीव उससे रहित हो, भूल समझे तो भूल से रहित हो जाता है। बात तो जगह जगह जिनागम में आई है ऐसा कहते हैं, ध्यान अपन नहीं खींचे, स्वलक्षी विचारधारा से मेरे में यह भूल ऐसे हो रही है ऐसा ध्यान नहीं आ जाता है। जो ध्यान जाए भूल पकड़ने में आए तो भूल रहने वाली छूट जाएगी। भूल का ज्ञान भूल रहित होता है हमेशा, भूल का ज्ञान भूल रहित होता है, और भूल का ज्ञान भूल को रहित दशा को भी उत्पन्न करता है, भूल का ज्ञान भूल को भूल का नाश कर देगा, ये नियम है। ट्रांसलेशन है थाम थाम जिनागम में थाम थाम आवाज है, मूल जो बात है एनो टोन बहुत सारो हो, गुजराती में टोन बहुत सारो है, एक तो हिंदी में नहीं आता, जगह जगह में थाम थाम में जो टोन आवे है ये जगह जगह में नहीं आता, ये फर्क पड़े थाम थाम से न जिनागम में बहुत सी जगह ये बात है। हाँ सर्वत्र बात, हाँ बहुत अच्छी बात इधर आई है। भूल को समझकर मुमुक्षु जीव उससे रहित हो, जीव की भूल देखने पर तो वह अनंत विशेष लगती है, जीव की भूल देखने जाए तो ये तो बहुत अनंत विशेष है, बहुत से प्रकार की है, परंतु सबसे पहले जीव को सब भूलों की बीज भूत भूल का विचार करना योग्य है। बीज भूत मूल भूल कैसे हुई, तो फिर भूल की परंपरा लग गई, ऊंधे घड़े पे सब ऊंधा घड़ा लग गया, कि जिस भूल का विचार करने से सभी भूलों का विचार होता है, मूल भूल का विचार करेंगे तो दूसरे दूसरे भूलों का भी समझ में बात आ जाएगी। और जिस भूल के दूर होने से सब भूलें दूर हो ही जाती है, बीजभूत भूल है उसको पकड़ना है। मूल भूल क्या होगी इसमें तो नहीं लिखा है, ये बात नहीं पकड़ी। मूल भूल वो ही हुई है कि उसने सत्पुरुष का आश्रय करने का, पहचान करने का उपाय किया, शास्त्र पढ़े, संवाद समझे, धारणा किया, लेकिन मूल बात रह गई है। वो साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजूर न पड़ो, अब क्यों विचारत है उनसे, उन सबसे कुछ और रहा उन साधन से, बिन सदगुरु कोई न भेद लहे। इसका जो रहस्य है वो सत्पुरुष ज्ञानी पुरुष बिना कोई तुमको तुम्हें समझ में आएगा नहीं। बिन सदगुरु कोई न भेद लहे, मुख आगल है कह बात कहे, तेरा आत्मा तो तेरे पास है क्या बात करे, लेकिन सदगुरु के दर्शाया बिना तुमको देखने में कभी आएगा नहीं।
अनुभव करने की चीज है,
बहुत जगह जगह अलग अलग वचन पद्धति से यही बात को मुख्य किया है। फिर से जीव को भूल देखने पर तो वो अनंत विशेष लगती है, परंतु सबसे पहले जीव को सब भूलों की बीजभूत भूल का विचार करना योग्य है। बीजभूत भूल का हिंदी तो बराबर कि जिस भूल का विचार करने से सभी भूलों का विचार होता है, इस भूल का विचार करने से सभी भूल का विचार होएगा, और जिस भूल के दूर होने से सब भूलें दूर हो जाती है। एक यथार्थ सत्संग मिल गया, सब भूल दूर हो जाएगी। कोई जीव कदाचित नाना प्रकार के भूलों का विचार करके उस भूल से छूटना चाहे तो वह कर्तव्य है। अनेक भूल होती है, उससे छूटने का तरीका, कोई क्रोध होता है तो क्षमा का धारण करे, मान होता है तो विनम्रता को धारण करे, लोभ होता है तो उदारता को धारण करे, ठीक है तो कर्तव्य है। और वैसे अनेक भूलों से छूटने की इच्छा मूल भूल से छूटने का सहज कारण होता है, फिर भी मास्टर के हाथ में आने चाहिए। ऐसे एक 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 भूल मिटाने जाएगा तो फिर बाद में खड़ी होगी क्या करोगे, अभी मिटी बाद में खड़ी होगी क्या करोगे, इसका कोई इस प्रकार से सही रास्ता नहीं है। शास्त्र में जो ज्ञान बताया गया है वो ज्ञान दो प्रकार से विचारणीय है। शास्त्र में दो प्रकार का ज्ञान की शैली चली है, एक प्रकार उपदेश का है और दूसरा प्रकार सिद्धांत का है। तो 506 में जो बात किया है ने वो आगे से शुरू कर दिया है कि जो शास्त्र में बातें आती है उसमें एक उपदेश का विभाग है और एक सिद्धांत का विभाग है। सिद्धांत है उस वस्तु का स्वरूप है, अन्य मत वाले कहते हैं और जैन मत वाले कहते हैं उसमें सिद्धांत ज्ञान जो है वस्तु का सही स्वरूप को निरूपण करता है, लेकिन उसको समझने के लिए उपदेश जरूरी है, उपदेश का परिणाम होना जरूरी है। जन्म मरण आदि क्लेश युक्त इस संसार का त्याग करना योग्य है। जन्म मरण आदि क्लेश युक्त इस संसार कैसा है? संसार क्लेश युक्त है, आराम है ऐसी बात नहीं लिया, सुखी है कोई कोई सुखी है, इतना परसेंट सुखी है वो बात नहीं लिया, सब मरण के भय से ग्रसित है। जन्म मरण आदि क्लेश युक्त इस संसार का त्याग करना योग्य है, त्याग करना मैंने उस पर से अपना अपनत्व तो उठा लेना। अनित्य पदार्थ में विवेकी को रुचि करना नहीं होता, शरीर आदि कुटुंब आदि अनित्य पदार्थों में विवेकी लोग है वो रुचि करता नहीं है, उसको वो प्रिय नहीं लगता। माता पिता स्वजन आदि सबका देखो लिया कि नहीं लिया, माता पिता स्वजन आदि सबका पर स्वार्थ रूप संबंध होने पर कैसा संबंध है? सबका स्वार्थ रूप संबंध है, स्वार्थ रूप संबंध होने पर भी यह जी उस जाल का आश्रय किया करता है, है? स्वार्थ रूप संबंध होकर के इस जाल का संबंध पकड़ता है, बहुत पकड़ करता है, ये मेरे हैं मेरे हैं और मेरे हैं और इसकी मुझे उपाधि है, इसको ये हो गया इसको वो हो गया इसको वो हो गया। इस जाल का आश्रय क्या करता है? जाल का संबंध नहीं रखता, आश्रय क्या करता है कि इसके बिना मुझे चलेगा नहीं, ये जो घर वाले है ना इसके बिना कैसे चले घर में, हाँ जो उसके बिना हमको तो चलेगा नहीं, हाँ अलग बात है, तो ऊपरी ऊपरी संबंध है और क्या है, टेम्पररी व्यवहार करने के लिए है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं है, यही उसका अविवेक है। इस कुटुंब की जाल का आश्रय करना यही जीव का अविवेक है, इस कारण क्या हुई अधोगति का कारण है, ये जाल का आश्रय हुई अधोगति का कारण है। प्रत्यक्ष रूप से त्रिविध ताप रूप यह संसार ज्ञात होते हुए भी एकला त्रिविध ताप है, आदि व्याधि उपाधि का ताप के सिवा और कुछ संसार में है ही नहीं, तो भी मूर्ख जीव कैसा बोला तो भी मूर्ख जीव उसमें विश्रांति चाहता है, विश्रांति मिलने वाली है ही नहीं, चाहता है कि यहाँ मुझे आराम मिले विश्रांति मिले, कभी मिलने वाली है ही नहीं। परिग्रह आरंभ और संग ये सब अनर्थ के हेतु है, क्या परिग्रह अनर्थ का हेतु है, आरंभ भी अनर्थ का हेतु है और उन लोगों का संग भी अनर्थ का हेतु है, इत्यादि जो शिक्षा है वो उपदेश ज्ञान है, ऐसी जिसमें शिक्षा मिले वो उपदेश ज्ञान है, ऐसी शिक्षा नहीं मिले तो उपदेश ज्ञान भी नहीं है। आत्मा का अस्तित्व नित्यत्व एकत्व अथवा अनेकत्व बंधादि भाव मोक्ष बंधादि बंध स्मरण निद्रा वगैरह मोक्ष ये सब आत्मा की सर्व प्रकार की अवस्था है, ये सब अवस्था है मूल स्वरूप नहीं, पदार्थ और उसकी अवस्था इत्यादि विषयों की दृष्टांत आदि से जिस प्रकार से सिद्ध किया जाता है वह सिद्धांत ज्ञान है। तो पदार्थ को सिद्ध करना, उसकी हर प्रकार की अवस्था को तत्व रूप दृष्टि से जैसी है वैसी सिद्ध करना, ये सिद्धांत ज्ञान का विषय है, उपदेश ज्ञान का विषय दूसरा है, सिद्धांत ज्ञान का विषय दूसरा है। इस प्रकार से उपदेश और सिद्धांत ज्ञान में क्या अंतर है वो बात लिया है, आगे थोड़ी और बात भी है। Jai Shri Mangal Bhagavan 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 Jai Shri Mangal Bhagavan
जाएगा।